कदम ब कदम कदम ब कदम फासिज्म की तरफ को जा रहे हैं। इसका जवाब क्या है? फासिज्म का एक ही जवाब है, देश का जागृत जनमत।
ये आवाज है उस शख्स की जिसने संभवतः गांधी और नेहरू के बाद आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारधारा को सबसे अधिक प्रभावित किया है। उन्होंने ताउम्र नैतिक राजनीति पर जोर दिया और उनके नैतिक पक्ष का लाभ उठाने के लिए ही इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण को 1971 में बांग्लादेश के पक्ष में जनमत बनाने के लिए दुनिया के कई देशों में भेजा। लेकिन 1973 के बाद से इन संबंधों में खटास आने लगी। मशहूर पत्रकार और जीपी आंदोलन में भाग लेने वाले राम बहादुर राय कहते हैं,
जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के संबंध तो चाचा और भतीजी का था, लेकिन जब भ्रष्टाचार का मुद्दा जेपी ने उठाना शुरू किया तो इंदिरा गांधी की एक प्रतिक्रिया से वह संबंध बिगड़ा। 1 अप्रैल 1974 को भुवनेश्वर में इंदिरा गांधी ने एक बयान दिया, जो बड़े पूंजीपतियों के पैसे पर पलते हैं उन्हें भ्रष्टाचार पर उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। ये जो बयान था उससे जेपी को बहुत चोट लगी। मैंने उन दिनों देखा है कि जेपी करीब 15-20 दिन तक उन्होंने दूसरा कोई काम नहीं किया सिवाय इसके कि उनकी जो आमदनी थी खेती से बाकी जगहों से, उस आमदनी को का ब्यौरा तैयार किया, प्रेस में दिया और इंदिरा गांधी को भी भेजा कि ये है हमारी आमदनी, ये हमारा खर्च।
जेपी के एक और पुराने सहयोगी रजी अहमद, जो कि पटना में गांधी संग्रहालय के सचिव हैं, कहते हैं कि जेपी जवाहरलाल नेहरू को अपने बड़े भाई की तरह मानते थे।
जब प्रकाश जी की ट्रेनिंग तो आनंद भवन में हुई थी, उस वक्त इंदिरा गांधी कम उम्र थे। जवाहरलाल जयप्रकाश जी के जितने करेस्पॉन्डेंस देखेंगे तो जवाहरलाल को वो माई डियर भाई लिख रहे हैं और जवाहरलाल जो जवाब देते हैं माई डियर जयप्रकाश, तो बड़े भाई और छोटे भाई का रिलेशनशिप जब तक जवाहरलाल जिंदा रहे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते रहे, लेकिन जब वो तो उस पीढ़ी के जो है आज की पॉलिटिक्स नहीं है कि वो खानदानी लड़ाई होकर आ गई है। इंदिरा जी तो आनंद भवन की लिए थी, तो इसलिए जयप्रकाश जी से बहुत ही करीबी थी और 71-72 तक जो है वो बहुत ही स्मूथ रिश्ता है। वो हमेशा जयप्रकाश जी के लिए हिंदू ही रही है। एक लेकर अगर गौर से अगर आप देखेंगे तो चंडीगढ़ से जेल डायरी है, जो एक लेटर लिखा है उसमें पहली बार लालमन जयप्रकाश जी ने माई डियर प्राइम मिनिस्टर लिखा है।
राम बहादुर राय का मानना है कि जेपी और इंदिरा के बीच दूरी बढ़ने में जेपी की पत्नी प्रभावती देवी की मौत ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी।
प्रभावती जी गई हैं 15 अप्रैल 1973 को। मेरा ये मानना है कि प्रभावती जी जेपी और इंदिरा के बीच में एक ऐसी कड़ी थी जो दोनों को जोड़े रखती थी। प्रभावती जी को इंदिरा गांधी भी मानती थी, इसलिए मानती थी क्योंकि उनकी माता से प्रभावती जी का गहरा संबंध था। कमला नेहरू जब अपने विषाद के क्षणों में अगर सहारा खोजती थी तो वो प्रभावती जी के पास जाती थी या प्रभावती जी से अपने मन की बात कहती थी। और ये संबंध मेरा ऐसा ख्याल है कि जब जेपी आनंद भवन के कांग्रेस मुख्यालय में विदेश विभाग संभालते थे और नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, उन दिनों से ये संबंध विकसित हुआ। इंदिरा गांधी राजनीति में नहीं थी तो मेरा ऐसा ख्याल है कि जब फिरोज गांधी से इंदिरा गांधी के संबंध बिगड़े तो उसको सुधारने या उन दिनों में भी कोई अगर माँ तुल्य कोई महिला थी जिसको इंदिरा गांधी अपनी बात सुना सकती थी या बता सकती थी, वो थी प्रभावती जी। एक नैतिक महिला के तौर पर उनका विकास हुआ था जिसके कारण से जेपी और इंदिरा गांधी के संबंधों को आजीवन उन्होंने संभाले रखा।
इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण को नजदीक लाने का बीड़ा सबसे पहले कांग्रेस के युवा तुर्क कहे जाने वाले चंद्रशेखर ने उठाया था, लेकिन कुछ और लोग भी इंदिरा जेपी बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे थे। चंद्रशेखर अपनी आत्मकथा जिंदगी का कारवां में लिखते हैं।
जेपी ने मुझसे भोजपुरी में कहा, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन मुझसे कहा गया है कि इसकी चर्चा किसी से नहीं करनी है, खासतौर से आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। जेपी ने कहा कि इंदिरा जी ने आज उन्हें बिहार आंदोलन के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, इसके लिए उन्होंने एक ड्राफ्ट भेजा है, इसके आधार पर वो मुझसे बात करना चाहती हैं। उन्होंने मुझे ड्राफ्ट दिखाया। मैंने पढ़ा और कहा, ये बिल्कुल ठीक है, इस आधार पर आप समझौता कर लें। जेपी ने कहा, समस्या ये है कि इंदिरा जानती हैं कि उनसे आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, फिर उन्होंने आपसे इस बात को छिपाने के लिए क्यों कहा? मैंने उनसे पूछा, ये ड्राफ्ट आपके पास कौन लेकर आया था? उन्होंने झिझकते हुए बताया, मेरे पास श्याम बाबू और दिनेश सिंह आए थे। सुनते ही मैंने कहा, इसके आधार पर आपसे कोई समझौता नहीं होगा, इसका प्रायोजन सिर्फ इतना है कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपसे बात हो रही है।
1 नवंबर 1974 को जेपी रात के 9 बजे इंदिरा से मिलने उनके निवास 1 सफदरजंग रोड गए।
जेपी को यह बताया गया था कि बातचीत आप और इंदिरा गांधी के बीच होनी है। जब जेपी 1 सफदरजंग यानी प्रधानमंत्री निवास में पहुंचे हैं तो उनको देख करके हैरानी हुई कि यहाँ बाबू जगजीवन राम पहले से बैठे हुए हैं। तो उनको पहला खटका कहें, संदेह कहें, तो यहाँ से शुरू हुआ। दूसरी घटना ये हुई कि इंदिरा गांधी कुछ नहीं बोल रही, जो कुछ बोलना है वो बाबू जगजीवन राम बोल रहे हैं। अंत में जब करीब करीब बात खत्म हो गई थी तो सिर्फ इंदिरा गांधी ने एक वाक्य कहा है, और वह वाक्य जो है वो जेपी के लिए बहुत मर्म पर चोट करने लायक था। उन्होंने कहा कि जेपी आप कुछ देश के बारे में भी सोचिए। और जेपी कहते हैं कि इंदु, मैंने अब तक देश के अलावा और क्या सोचा है, और ये कह करके वो बाहर आ गए। आने के बाद उनसे जो लोग भी मिले हैं, जेपी बहुत मर्माहत थे, जो लोग भी मिले हैं सबसे उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी ने मेरा अपमान किया। और अब जेपी ने ये कहना भी शुरू कर दिया कि अब इंदिरा गांधी से हमारा सामना होगा वो चुनाव के मैदान में होगा।
लेकिन 1 सफदरजंग रोड छोड़ने से पहले जेपी ने इंदिरा से कहा कि वो 1 मिनट उनसे अकेले में बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने उनको लगभग पीले पड़ चुके कुछ पत्रों का एक बंडल दिया। ये पत्र इंदिरा गांधी की माँ कमला नेहरू ने जेपी की पत्नी प्रभावती देवी को 20 और 30 के दशक में लिखे थे। प्रभा कमला की अकेली दोस्त और राजदार थी, जिनसे वो नेहरू परिवार में उनके साथ हो रहे खराब सलूक की चर्चा कर सकती थी। जेपी के इस जेस्चर से इंदिरा थोड़ी देर के लिए भावुक जरूर हुई, लेकिन तब तक उन दोनों के बीच खाई इतनी बढ़ चुकी थी कि उसको पाटना बहुत मुश्किल था। इंदिरा गांधी के सचिव रहे पीएन धर अपनी किताब इंदिरा गांधी द इमरजेंसी एंड इंडियन डेमोक्रेसी में लिखते हैं,
हमारे और जेपी के बीच मध्यस्थता कर रहे गांधी पीस फाउंडेशन के सुगत दास गुप्ता ने मुझसे कहा था, नीतिगत मामलों का उतना महत्व नहीं है, मेरी सलाह यह है उनको कुछ मान दीजिए। बकौल राधाकृष्ण और दास गुप्ता, जेपी उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी उनसे उसी तरह के संबंध स्थापित करेंगी जैसे नेहरू और गांधी के बीच हुआ करते थे। इंदिरा गांधी जेपी की एक इंसान के तौर पर कद्र जरूर करती थी, लेकिन उनके विचारों से वो शुरू से ही सहमत नहीं थी। उनकी नजर में वो एक ऐसे सिद्धांतवादी थे जो अव्यवहारिक चीजों को अधिक महत्व देते थे। एक दूसरे के बारे में ऐसे विचार रखने के बाद दोनों के बीच समान राजनीतिक समझ पैदा करना लगभग असंभव था। सच्चाई ये थी कि दोनों का अहम बहुत बड़ा था और नियति के पास उन दोनों के बीच टकराव होने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
टकराव इस हद तक गया कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी और जेपी को अन्य विपक्षी नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।
भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है, विधिवत रूप से।
जेल में जेपी की तबीयत बहुत खराब हो गई, अंततः उन्हें पैरोल पर छोड़ा गया। जेल से छूटने के बाद बीबीसी ने सबसे पहले उनसे बात की। उन्होंने भारत की जनता को संदेश देते हुए कहा,
जनता हिम्मत रखे और अपनी रीढ़ सीधी रखे, युवक अपने डटे रहे, भविष्य अभी अंधेरा लगता है लेकिन उज्जवल है, देश निकलेगा इस अंधेरे से।
1977 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाकर चुनाव कराने का फैसला लिया। इस चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई और इंदिरा गांधी अपनी खुद की सीट हार गई। ऐसे समय जब जनता पार्टी की सरकार बनने की कवायद चल रही थी, जेपी इंदिरा से मिलने उनके घर गए।
इंदिरा गांधी उन दिनों नर्वस ही नहीं थी, हिस्टीरिया का जो दौरा होता है उस तरह के दौरे से गुजर रही थी, क्योंकि उनको ये लग रहा था और बयान भी इस तरह के आ रहे थे कि संजय गांधी को पकड़ करके और सार्वजनिक रूप से उनका उसी तरह से नसबंदी की जाएगी जैसे उन्होंने दूसरे लोगों की करवाई थी। इससे इंदिरा गांधी संजय गांधी की सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित थी। जेपी को ये सूचनाएं भी मिली और जेपी का जो मानवीय पक्ष था वो भी काम कर रहा था। जेपी गए हैं, इंदिरा गांधी से भेंट की है, इंदिरा गांधी से ये पूछा है कि प्रधानमंत्री न रहने पर तुम्हारा खर्च वगैरह कैसे चलेगा। तो इंदिरा गांधी ने उनको ये बताया कि हमको जो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकों से जो रॉयल्टी आती है, यानी जो आमदनी के जरिए थे, उसके बारे में बताया। और जेपी ने इंदिरा गांधी को आश्वस्त किया कि किसी तरह की जाति, किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। और उन्होंने चौधरी चरण सिंह से, मुरारजी देसाई से व्यक्तिगत तौर पर अपील की। यही नहीं, उन्होंने एक बयान भी दिया और बयान में एक पॉलिटिकल पॉइंट कहा। और वो दरअसल वो बयान एक तरह से कहा जाए तो भविष्य का संकेत भी था। बयान यह था कि इंदिरा गांधी का राजनीतिक भविष्य समाप्त नहीं हुआ है, वो है, और इसे जनता पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए।
कुछ ही दिनों में जेपी का जनता पार्टी से भी मोह भंग हो गया। वो पटना में बीमार पड़े थे और जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी कोई सुध नहीं ली। कुलदीप नैयर कहते हैं,
जेपी वो समझते थे कि पॉपुलैरिटी में उनसे ज्यादा है और वो खुद चाहते थे मैं पॉपुलर हुए नहीं इतने। मैंने बल्कि कहा एक दफा कि मैं अभी पटना में था तो जेपी बहुत नाराज थे, तो मैंने कहा मुरारजी भाई आपको जाना चाहिए पटने। मैं तो कभी गांधी को मिलने नहीं गया था, तो ये क्या है? तो ये वो उनके दिमाग में था। मैंने कहा नहीं, जेपी की मूवमेंट तो क्या ठीक है, जेपी मूवमेंट वगैरह ये तो हम सब लोगों ने भी तो कुछ किया वगैरह इस तरह का। बल्कि जब इंदिरा गांधी ने बहुत शी स्पॉटेड आउट, जब वो जेपी का ध्यान तो होता है तो शी वॉज देयर और सब कुछ वहीं करती है जाके, क्योंकि शी वॉन्टेड टू गेट माइलेज एंड शी डिड गेट दैट पॉइंट।
रजी अहमद कहते हैं कि जेपी की जिंदगी के आखिरी दिनों में दोनों के रिश्ते फिर ठीक हो गए, लेकिन कुछ टीकाकारों का मानना है कि इंदिरा गांधी की जेपी से आखिरी मुलाकात उनकी राजनीति का हिस्सा थी, उसमें वो पूरी तरह से सफल भी हुई। रेहान फजल, BBC दिल्ली।